नमस्कार भारत, 26 जुलाई दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। कीनिया में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक अधिकारों का समर्थन किया, लेकिन कीनिया ने कहा, हमारी मान्यताएं हैं अलग।
Our culture, our societies don't accept. It's very difficult for us to be able to impose on people that which they themselves do not accept.
चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास किया, ताइवान ने नाराजगी जताई, क्या है पूरा मामला?
चीन ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहती है। यहाँ के नेता बात में कसमें खाते हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन ताइवान को देश में वापस ले आएंगे।
भारत प्रशासित कश्मीर में बार बार बादल फटने से लोगों के मन में बैठ गया है डर। होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अमरीका और अफ्रीका के बीच व्यावसायिक रिश्तों में तेजी लाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने कीनिया में भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कीनिया के प्रशासन से कहा कि अगर जल्द ही इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो कीनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में समलैंगिकों का भी समर्थन किया। हालांकि इस मुद्दे पर कीनियाई राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने ओबामा से सहमत न होने की बात कही। उत्तरी कैमरून के मारुआ शहर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 19 लोगों के मारे जाने की खबर है, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। सैन्य सूत्रों का कहना है कि शहर में मौजूद एक भीड़ भाड़ वाले बार में यह धमाका हुआ। स्थानीय मीडिया का कहना है कि विस्फोट को अंजाम देने वाली एक किशोर लड़की थी। 3 दिन पहले भी कैमरून के एक बाजार में 2 आत्मघाती धमाके हुए थे जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हुई थी। रूस में 2018 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए होने वाले क्वालिफाइंग मुकाबलों के ड्रॉ हो चुके हैं। कैमरून के पूर्व स्ट्राइकर सैमुअल ईटो और रूस के पूर्व गोलकीपर रीनात दासेव ने कांच के 2 कटोरों में मौजूद अफ्रीकी देशों की पर्चियां निकाली और उनके नाम का ऐलान किया। सबसे पहला नाम सोमालिया का निकला, वहीं दक्षिण सूडान इस प्रतियोगिता में पहली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हिस्सा लेगा। ड्रॉ से पहले फीफा के निवर्तमान प्रमुख सेप ब्लैटर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और कहा कि पुतिन ने उनको इस प्रतियोगिता का पूरा समर्थन करने का भरोसा दिलाया है। ब्लैटर ने कहा, फीफा पूरी तरह से रूस पर विश्वास करता है कि वो इस 2018 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप को सफल बनाने में हमारा पूरा साथ देंगे। हमें रूस के खेल मंत्री विताली मुत्को और विश्व कप 2018 के निदेशक एलेक्सी सोरोकिन ने जो खाका तैयार करके दिया है, हम उससे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। फीफा के निवर्तमान प्रमुख सेप ब्लैटर के शब्द। इससे पहले मई में स्विट्जरलैंड की पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में फीफा के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर पिछले 20 सालों में गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद रूस में होने वाले विश्व कप पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे थे। सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन यमन में विद्रोहियों पर बमबारी 5 दिन के लिए रोक देगा ताकि आम नागरिकों तक राहत और मदद पहुंच सके। सऊदी अरब की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक संघर्ष विराम रविवार आधी रात से प्रभावी होगा, लेकिन गठबंधन बल का कहना है कि संघर्ष विराम के दौरान हूती विद्रोहियों की सैन्य हरकत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संघर्ष विराम की यह घोषणा 23 सूबे में हवाई हमलों के बाद हुई है, जहां आम लोगों समेत 120 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया से, जहां अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिकों के अधिकारों की पैरवी की है। इसके जवाब में कीनिया के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने कहा कि उनका समाज समलैंगिकता को स्वीकार नहीं करता। ओबामा ने कीनिया में भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए अमल चौधरी से।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कीनिया में दिए अपने भाषण में भ्रष्टाचार और समलैंगिकता के मुद्दे पर दो टूक संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषण में समलैंगिकों का पूरी तरह से समर्थन किया। हालांकि इस मुद्दे पर कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने संकेत दिए कि इस पर उनकी सोच ओबामा से अलग है। वहीं ओबामा ने कीनिया के प्रशासन को चेताया कि देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो यह उनकी तरक्की में बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। ओबामा ने कहा,
This may be the biggest impediment to Kenya growing even faster.
कीनिया पहले के मुकाबले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों के पास सफल होने के पहले से ज्यादा मौके हैं, लेकिन यहाँ मौजूद भ्रष्टाचार आपकी तरक्की के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में यहाँ जो लोग व्यापार करना चाहते हैं या फिर एक आम जिंदगी भी जीना चाहते हैं, उनके लिए भी जीवन बहुत मुश्किलों भरा है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। समलैंगिकों के अधिकारों पर एक सवाल के जवाब में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा,
If somebody is a law-abiding citizen who is going about their business,
अगर कोई नागरिक सभी कानूनों का पालन कर रहा है, अपना व्यवसाय या नौकरी करने के साथ हर वो काम कर रहा है जो एक अच्छे नागरिक को करने चाहिए और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ऐसे में उसके साथ केवल इस आधार पर भेदभाव करना कि वो किससे प्यार करता है पूरी तरह से गलत है। हालांकि कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने समलैंगिकता पर बराक ओबामा की राय का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा,
केन्या एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वी शेयर सो मेनी वैल्यूज आवर कॉमन लव फॉर डेमोक्रेसी।
कीनिया और अमेरिका के बीच कई ऐसी चीजें हैं जो एक समान हैं, जैसे कि लोकतंत्र, उद्यमशीलता और पारिवारिक मूल्य। यह ऐसी चीजें हैं जिनका हम दोनों ही बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमसे पूरी तरह से अलग हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमारी संस्कृति और हमारा समाज मान्यता नहीं देता है, और जो चीजें हमारे लोग दिल से ही नहीं मानते उसे उन पर थोपने का कोई मतलब ही नहीं है। कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा के शब्द। राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा का ये पहला कीनिया दौरा है। उनके पिता का जन्म कीनिया में ही हुआ था। वहाँ की मीडिया में उनकी इस यात्रा को घर वापसी बताया जा रहा है। कीनिया के बाद ओबामा इथोपिया भी जाएंगे, जहाँ वे अफ्रीकी यूनियन को संबोधित करेंगे।
ताइवान ने उन खबरों पर नाराजगी जताई है जिनमें कहा गया है कि चीन में ताइवान को निशाना बनाकर सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV ने कुछ दिन पहले वीडियो प्रसारित किया था जिसमें चीन की सेना को ताइवान के राष्ट्रपति के दफ्तर जैसी इमारत की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया था। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे सहयोगी विनीत खरे ने बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की।
पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इनर मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में एक महल बनाया जो देखने में बिल्कुल ताइवान के प्रेसिडेंट के पैलेस की तरह है, और उस पर उन्होंने किस तरह से स्टॉर्म करना, किस तरह से अटैक करना, किस तरह से उसे कब्जा करना, किस तरह से फायरिंग करना, टैंक चलाना, एयरक्राफ्ट चलाना, सारा कुछ मिलिट्री जो करता है एक बड़े महल को कब्जा करने के लिए, वो सारा के सारा उस पर एक्सरसाइज करके उसकी ट्रेनिंग ली जा रही है। CCTV जो कि सरकारी टेलीविजन है, उन्होंने उसको दिखाया। ये दिखाया July 5 को। उसके कई दिनों के बाद, करीबन 20 दिन के बाद, साउथ चाइना के एक पेपर ने इसको पब्लिसाइज किया और ये कहा कि ये बताता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो यहाँ की मिलिट्री है वो कब्जा कर लेगी ताइवान को। अब ताइवान का किस्सा यह है कि 1949 में चीन को अपना फाउंडेशन उन्होंने मनाया। उस वक्त चियांग काईशेक जो कि चीन के साथ के बड़े नेता हुआ करते थे, वो माओदिंग के साथ लड़ाई में हार गए और वो भाग गए, तो ताइवान बन गया चियांग काईशेक का एक अलग देश। उसके बाद से 1950 से आज तक, 1949 से लेके आज तक, चीन उसको कब्जा नहीं कर पाई है और चीन का ये मानना है कि उसका हिस्सा है। अपने आप में ताइवान बहुत अमीर देश है, उसका अपना मिलिट्री है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी अपनी करेंसी है, अपना देश है, अपनी डेमोक्रेसी है और अपना चुनाव होता है। तो चीन चाहती है कि इस पर कब्जा कर ले, और बहुत सालों से चीन ने वह मिसाइल्स और रॉकेट उसके बॉर्डर पे लगा रखे हैं, किसी वक्त अटैक करेंगे। चीन यूनिफिकेशन करना चाहती है, ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहती है। यहाँ के नेता बात में कस्मे वादे खाते हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन ताइवान को देश में वापस ले आएंगे। अगले जनवरी महीने में चुनाव है ताइवान में, और ऐसा लग रहा है कि अभी की जो सरकार है, नेशनलिस्ट सरकार, वो चुनाव हारने वाली है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो आज़ादी की बात कर रही है, चीन के साथ कोई भी ताल्लुक से अलग होने की बात कर रही है, वो चुनाव जीतने के तैयारी में है।
चीन की तरफ से क्या कहा गया है सैबल?
पहले तो ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा नाराज होते हुए कि भाई ये बताती है कि चीन का ताइवान पे आक्रमण करने की जो मानसा है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है और अभी भी वो कोशिश कर रही है। इससे चीन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज है और हमेशा की तरह हम ऐसे पैरिस बनाते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं।
ये जो जिस तरह से प्रैक्टिस हुई है उसके अपने अलग मतलब निकाले जाएंगे, इसकी राजनीति क्या है?
बहुत सीधा है, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है तो चीन के हाथ कमजोर हो जाएंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या चीन की मिलिट्री और यहाँ की टेलीविजन ये संकेत देना चाहती है कि हम देखो भाई हमसे अलग होने की बात मत करो, हम तो कब्जा कर लेंगे, और इस तरह से ताइवानी इसको दबाना चाहती है, क्योंकि ताइवान का जो बिजनेस क्लास है वो चीन के साथ संपर्क रखने के बिल्कुल संपर्क में है। लेकिन ताइवान के जो युवा वर्ग है उन्होंने अभी भी आंदोलन किया था, गत साल पार्लियामेंट 5 महीने तक कब्जे में थी, जवान लड़कों ने कब्जा करके रखा था।
ये थे बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता। रुख करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर का। भारत प्रशासित कश्मीर में लोग हैरान हैं कि आखिर बार बार बादल क्यों फटते हैं। बादल फटने का जो नया सिलसिला शुरू हुआ उससे लोग बुरी तरह भयभीत हो गए हैं, क्योंकि पिछले साल दक्षिणी कश्मीर में बादल फटने के बाद ही बाढ़ आई थी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जुलाई में बादल फटने की दर्जनों घटनाएं हुई जिनमें अभी तक 10 लोग मारे गए। सिर्फ 2 दिन पहले कश्मीर के बालतल क्षेत्र में बादल फटने से 2 बच्चों समेत 3 लोग मारे गए थे। बालतल से ही श्री अमरनाथ गुफा के लिए पद यात्रा आरंभ होती है। इस वर्ष यात्रा को कई बार मौसम की खराबी के कारण स्थगित करना पड़ा था। पिछले हफ्ते भी गांधरबल जिले के कुलन गाँव में बादल फटने की घटना में 4 लोग मारे गए। पिछले वर्ष की घातक बाढ़ और इस वर्ष गर्मियों में अक्सर वर्षा के कारण जेहलम नदी के स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है और विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राउंड वाटर का स्तर ऊंचा होने के कारण इस वर्ष भी बाढ़ की आशंका है। कश्मीर के जाने माने क्लाइमेटोलॉजिस्ट शकील रामशु कहते हैं,
हमने देखा कि एंड ऑफ फेब से लेके अभी तक कश्मीर में मौसम बहुत वेट रहा, बहुत रेनफॉल हुई, स्नोफॉल भी हुई, तो उस वजह से वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ बहुत हाई है
जी।
तो मेरे ख्याल से नॉर्मली ये जो अभी हम फ्लड की सूरत हाल देख रहे हैं, एक मामूली सा फ्लड आ जाता है जो मेरे ख्याल से एम्बैकमेंट्स को ब्रीच नहीं करता या ओवरफ्लो नहीं करता
जी।
लेकिन जो अभी जो लोगों का खदशा है वो इसीलिए है कि कहीं ब्रीच ना हो जाए जहलीम में, क्योंकि बहुत जगहों पर ये बहुत ही कमजोर है
जी।
तो इसलिए मेरे ख्याल से उसका ज्यादा खदशा है, और एक और फ्लड आना तो यू नो दैट इज वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी अगर हम 100 ईयर डेटा देखें, 1 साल में 2 फ्लड।
लोगों में जहां एक तरफ डर है वहीं सरकार के विरोध गुस्सा भी है, क्योंकि मार्च में सरकार बनने के बाद अभी तक पिछले वर्ष के बाढ़ पीड़ितों को पूरी तरह मुआवजा भी नहीं मिला था कि नई बाढ़ की शंका मंडलाने लगी है। लगातार वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के बाद सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की एक योजना की घोषणा तो की है, लेकिन जहलीम की सफाई का काम अभी तक हाथ में नहीं लिया गया। बादल फटने की घटनाओं ने लोगों की शंका बढ़ा दी है। गौरतलब है कि बादल फटने की एक घटना से 70,000 टन पानी एक साथ एक ही जगह पर गिरता है, जिसके कारण नदी नालों में पानी भर जाता है और फ्लैश फ्लड से बस्तियां बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार के पास बाढ़ के खतरों से निमटने के लिए अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, क्योंकि अगस्त में फिर बारिश होगी और अक्टूबर में सरकार का दरबार जम्मू शिफ्ट हो जाएगा। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो हूं विश्वास में।
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर BBC की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा। पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। मैं हूं संदीप सोनी। कार्यक्रम में आगे आप जानेंगे दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है, लेकिन पहले बात करते हैं बिहार की, जहां मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने बिहार में गठबंधन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर कोसा। नीतीश कुमार ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इन नेताओं की बयानबाजी सियासत में किस तरह की हलचल पैदा करेगी, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी विनीत खरे ने पटना में वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद से बात की।
भाजपा के लिए बिहार बहुत ही क्रूशल है, खास करके दिल्ली इलेक्शन के बाद। उनको ये अगर ये नहीं जीते या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, सिग्नल कहीं ये नहीं किया जाए कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए उनको हर हाल में बिहार को जीतना है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार से उनको एक पुराना, ये जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ कि सेटल करना स्कोर, कि नीतीश जी ने पहली बार जो ऐसा धोखा खाए हैं उसका तो उनको, और लालू से तो उनकी पुरानी लड़ाई है जो सेकुलरिज्म मंडल कमंडल के नाम पर। तो इस हिसाब से भाजपा के लिए बिहार बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कहा जाए कि दरार भी देखने को मिली, इस पर भी रिपोर्टें हुई हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच गठबंधन की बात थी, एक पार्टी की बात थी, उस पर भी सहमति नहीं हो पाई है। उसके बीच में नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय जनता दल को लेकर कहना कि ये राष्ट्रीय जनता दल का असली मतलब है रोज जंगल राज का डर, क्या वो जो दूरियां हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है?
देखिए, दूरियां को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर भी रहे हैं, दूरी कम भी हो रही है, कभी तेज हो जाती है। कभी परसों रात में नीतीश कुमार लालू यादव के घर चले गए चुपके से विदाउट मीडिया टेंशन, उठकर बाद में पता चल गया कि नहीं, मीडिया वालों ने चैनल्स वाले लोकल रीजनल चैनल्स से पकड़ लिया। तो ये सब तो होगा, उसको तो कोशिश पूरी की जा रही है उसको एक्सप्लॉइट करने की, वो डिफरेंसेस को, क्योंकि इलेक्शन में तो अब ये दोनों बैटल लाइन ड्रॉ हो गया है दोनों बीच में। अब हर हाल में लालू नीतीश फाइट करेंगे और इधर इन लोगों के साथ ये होगा, तो शायद उसमें बहुत ज्यादा अब कामयाबी ना मिले।
तो क्या ये बराबर की टक्कर मानी जाए इसे, मतलब दोनों तरफ के जो दोनों पक्ष है इसे आप कितनी मजबूती से आंकते हैं? एक तरफ नीतीश और लालू जिनके आपस में इश्यूज हैं, दूसरी तरफ भाजपा, दोनों के जो मजबूत पक्ष हैं कमजोर पक्ष है, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
बहुत ही टफ फाइट जो कहते हैं हम, पिछले साल की तरह नहीं, एकदम साफ लग रहा था कि ये निकल जाएंगे और ये हार जाएंगे, कि इस बार चूंकि दोनों ग्रुप मिल गए हैं तो बहुत टफ फाइट है। तो ये रहा कि 25 साल के बाद मंडल भी और रथ भी, इधर मंडल की याद आ रही है नीतीश लालू को और मंडल का खेल बीजेपी वाले भी खेल रहे हैं, मतलब वो भी रात का नाम ले ही लेते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड ये वो, खास करके बैकवर्ड को प्रोजेक्ट करने के लिए, दलित को प्रोजेक्ट करने के लिए, राम विलास को जिस प्रोमिनेंस के साथ, अजीतन्ना मांझी को बैठा गया, प्लस रथ निकाला जा रहा थोड़ा सा रिलीजियस जो 1990-92 के आसपास था, तो दोनों को लेकर चला जा रहा है। मंडल पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, वो मंडल प्लस रथ दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रिलीजियस प्लस कास्ट दोनों। लड़ाई जो है बहुत ही बराबरी का टक्कर है, इसलिए अभी कहना बड़ा ही मुश्किल है लग रहा है।
जिस तरह की आर्थिक योजनाओं की बात कही है, बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैकेज देने की बात कही है, वहाँ करोड़ों रुपए के निवेश की बात नरेंद्र मोदी ने की है, इसका असर कितना होता दिख रहे हैं?
जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी कहे और बाद में भी कहा, उन्होंने भाषण के बाद भी, कि ये सारे जिसको पुरानी ही योजना ज्यादा है, कोई नई नहीं है, ये प्रॉमिस फुलफिल करने के नहीं, फुलफिल हुई नहीं है, और कितने वादे इनके पर विश्वास किया जाए, कहे कि या जब 14 फाइनेंस कमीशन की जो बात की तो उसे नीतीश कुमार ने फिर कहा आज कि वो जिससे बैकवर्ड रीजन ग्रांट जो फंड जो है वो भारत बिहार का जो है उसको कर लिया गया। तो इससे कोशिश तो पूरी किया जा रही है कि इलेक्शन के जमाने में एक पैकेज दिया जाए बिहार को, लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बोले नरेंद्र मोदी, इसका उन्होंने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था कि हम बिहार को देंगे इलेक्शन के जमाने में, लोकसभा इलेक्शन के जमाने में, तो ये इसका फायदा शायद उनके जो विपक्ष के नीतीश कुमार उठाएं, ताकि उनके लिए ये बहुत डियर है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोपों को झेल रहे भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत, अंकित चव्हाण और अजीत चंदेला को कल तब राहत की सांस मिली जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों से बरी कर दिया। इस पूरे मामले पर सुनिए आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
अदालत का फैसला आते ही तीनों आरोपियों के चेहरे खिल उठे और श्री संत ने कहा,
बहुत खुशी हो रहा है, भगवान के शुक्र है। अभी कोशिश यही करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग शुरू करें प्रॉपरली और होपफुली आई कैन गेट परमिशन फ्रॉम बीसीसीआई टू यूज द फैसिलिटीज सो दैट आई कैन गेट फिट एंड यू नो कम इनटू द सिलेक्शन प्रोसेस।
अजीत चंदेला ने भी अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से प्रकट की,
3 साल बाद मैं उस गंदे सपने से निकला हूं और दोबारा अपनी फैमिली के साथ वो चैन वाली नींद लूंगा और जब मैं उठूंगा तो अपनी क्रिकेट ग्राउंड में देखूंगा, अपने आप को फील करूंगा।
तीसरे आरोपी अंकित चौहान ने कहा,
मैं हमेशा से ही यही कहता आया हूं कि मैंने ये सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा है एंड इट इज बीन प्रूवन टुडे कि नहीं रखा है।
इस बहुचर्चित मामले में अजीत चंदेला के वकील राकेश कुमार ने कहा,
माननीय अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। हमने पहले दिन से कहा था, मोकोका के अंदर एक ये झूठा केस बनाया गया था, पहले दिन से इन खिलाड़ियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए जो आज कोर्ट में साबित हो गया झूठा।
वहीं बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद उसका फैसला नहीं बदलेगा। बीसीसीआई के फैसले उसके अपने अनुशासनात्मक कदमों पर निर्भर करते हैं और वो बदलेगा नहीं। बीसीसीआई इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में खेलने वाले इन खिलाड़ियों पर साल 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग के 6वें संस्करण में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद बीसीसीआई ने इनके क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया। मामला यही नहीं रुका और कुछ दिन बाद हिंदी फिल्मों के कलाकार विंदु दारा सिंह को सट्टेबाजों से कथित संबंधों के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में विंदु दारा सिंह से पूछताछ के बाद चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मैप्पन को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में दोनों को जमानत मिल गई। वैसे इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 20 अन्य लोगों पर मुकदमा चल रहा था। अदालत ने सबूतों के अभाव सभी को बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई 23 मई को पूरी हो गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्ज शीट के अनुसार स्पॉट फिक्सिंग मामले में कुल 42 लोगों पर आरोप तय किए गए जिनमें 6 फरार थे। अब देखना है कि तीनों खिलाड़ी क्या बीसीसीआई के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ते हैं।
खेलों की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है। अमल चौधरी कई अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं।
संदीप, अगर आज के अखबारों की बात करें तो हर एक अखबार के पहले पन्ने पर केवल 2 ही खबरें प्रमुखता से दिख रही हैं। पहली, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सभी आरोपी खिलाड़ियों का बरी होना, और दूसरी खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। इसमें अगर अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, मोदी ने मिशन बिहार की शुरुआत की, और दूसरी खबर का शीर्षक दिया है, श्री संत समेत 35 खिलाड़ी आईपीएल मामले में बरी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है, श्री संत स्पॉट फिक्सिंग मामले में बरी और पीएम मोदी ने नीतीश के खिलाफ उग्रता दिखाई, डेवलपमेंट का पत्ता चला। वहीं द हिंदू ने लिखा है, स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर बरी और मोदी ने बिहार कैंपेन की शुरुआत की। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है, फिक्सिंग मामले में बहुत सारी कमियां और श्रीशंत चंडीला चौहान छूटे। दूसरी तरफ अगर हिंदी अखबारों की तरफ नजर डालें तो जनसत्ता की हेडलाइन है, जंगल राज का डर और विकास का सपना दिखाया, और फिक्सिंग में श्रीशंत सहित सभी 36 आरोपी बरी। वहीं हिंदुस्तान हिंदी लिखता है, श्रीशंत समेत सभी आरोपी बरी और बिहार की मुश्किलें 100 दिन की, मोदी ने कहा। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, सबूत नहीं, श्रीशंत चंदीला चौहान बरी और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता की पीठ में छुरा घोंपा। और वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो भास्कर के पहले पन्ने पर अमरनाथ के यात्री कैंप के पास बादल फटने से 3 लोगों की मौत की खबर प्रकाशित की गई है, लेकिन इसके साथ इसकी एक तस्वीर भी लगाई है। इसमें आप पानी की भयावहता जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें किस तरह का उफान आया हुआ है और तमाम कारें उसमें इसी तरह से बहती चली जा रही हैं। और ऐसी ही तस्वीर जनसत्ता ने भी प्रकाशित की है और अमर उजाला ने भी ऐसी तस्वीर छापी है, लेकिन उन्होंने इसको अपने देश विदेश के पन्ने पर जगह दी है। वहीं एक और खबर भास्कर के ही पहले पन्ने पर है, फरीदाबाद की खबर है कि किस तरह से वहां के लोगों ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। खबर के अनुसार 20,000 लोगों ने 3 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाए और ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। वहीं दैनिक भास्कर में एक और बहुत ही अच्छी तस्वीर एक छपी है, जिसमें उसका उन्होंने शीर्षक दिया है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का द्वीप, 90 घर और 1200 लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये जो द्वीप है इसमें किसी तरह का कोई मतलब पुलिस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बहुत ही स्वच्छ यहाँ का पर्यावरण है, इसके बारे में बताया है।
कहाँ है ये द्वीप?
जी ये जो द्वीप है कोलंबिया से 2 घंटे की समुद्री यात्रा के बाद ये द्वीप आता है संदीप। और एक दूसरी और खबर है, 10 साल में चांद पर बनेगी बस्ती, रहने लगेंगे इंसान, ये खबर इन्होंने प्रकाशित की है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों के लिए, और आइए सुनते हैं आज देश दुनिया में क्या हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर सरकारी रेडियो पर सुबह 11 बजे अपने मन की बात कहेंगे। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख शरद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। दोनों पार्टियां केंद्र सरकार से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े जल्द जारी करने की मांग कर रही हैं। नागपुर में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM की नई ब्रांच खुल रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, हालांकि वो इसमें शिरकत करेंगी या नहीं ये भी साफ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन 2 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान कैमरन इंडोनेशिया के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर करने पर जोर देंगे। खेल की खबरों में प्रो कबड्डी लीग में आज पहला मैच जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स के बीच रात 8 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू होगा। वहीं दूसरा मैच तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा के बीच जयपुर में ही रात 9 बजे खेला जाएगा।
कार्यक्रम के समापन से पहले एक बार फिर विश्व समाचार अमल चौधरी से। खेल की खबरें छूट गई हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं आदेश कुमार गुप्त को।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। रशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल भारत के लिए अच्छा दिन नहीं रहा, क्योंकि भारत के सभी खिलाड़ी सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। तीसरी वरीयता हासिल पुरुष एकल वर्ग में खेल रहे अजय जयराम शीर्ष वरीयता हासिल इंडोनेशिया के टॉमी सुग्रियार्तो से 21-17, 21-7 से हार गए, तो पुरुष युगल में भारत के मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी शीर्ष वरीयता हासिल रूस के व्लादिमीर इवानोव और इवान सोजोनोव से 19-21, 21-7, 21-16 से हारी। इसके अलावा मिश्रित युगल में भारत के अक्षय दिवालकर और प्राजक्ता सावंत की जोड़ी भी जापान के युता वातानावे और अरीसा हिगाशिनो से 21-10, 21-8 से हार कर बाहर हो गई। उधर चिटगांव में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच बिना किसी नतीजे के कल ड्रॉ समाप्त हो गया। दरअसल इस मैच के 4th और 5th दिन का खेल बारिश के कारण हो ही नहीं सका। इससे पहले इस टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 248 रन पर समाप्त हुई थी, जबकि बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 326 रन बनाए थे। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने जरूर जमकर बल्लेबाजी की और उसने बिना किसी नुकसान के 61 रन बनाए थे। वहीं चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच खेला गया 4 दिवसीय अनधिकृत टेस्ट मैच भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। कल भारत ए के कप्तान चेतेश्वर पुजारा ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 206 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित कर दी और ऑस्ट्रेलिया ए के सामने जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन खेल समाप्त होने के समय ऑस्ट्रेलिया ए ने 4 विकेट खोकर 161 रन ही बनाए थे।
स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अब वाकई कार्यक्रम के समापन का वक्त हो चला है। इससे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अमरीका और अफ्रीका के बीच व्यावसायिक रिश्तों में तेजी लाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने कीनिया में भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की बात कही। उत्तरी कैमरून के मारुआ शहर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 19 लोगों के मारे जाने की खबर है, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। सैन्य सूत्रों का कहना है कि शहर में मौजूद एक भीड़ भाड़ वाले बार में यह धमाका हुआ। स्थानीय मीडिया के अनुसार विस्फोट को अंजाम देने वाली एक किशोर लड़की थी। रूस में 2018 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए होने वाले क्वालिफाइंग मुकाबलों के ड्रॉ हो चुके हैं। कैमरून के पूर्व स्ट्राइकर सैमुअल ईटो और रूस के पूर्व गोलकीपर रीना दासेव ने कांच के 2 कटोरों में मौजूद अफ्रीकी देशों की पर्चियां निकाली और उनके नाम का ऐलान किया। सबसे पहला नाम सोमालिया का निकला। सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन यमन में विद्रोहियों पर बमबारी 5 दिन के लिए रोक देगा ताकि आम नागरिकों तक राहत और मदद पहुंच सके। सऊदी अरब की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक संघर्ष विराम रविवार आधी रात से प्रभावी होगा, लेकिन गठबंधन बल का कहना है कि संघर्ष विराम के दौरान हूथी विद्रोहियों की सैन्य हरकत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक पूरी टीम को अनुमति दीजिए।